वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी का पावन उत्सव है और एक साथ ही साथ आज एकादशी है और पूर्णिमा का दिन बलराम जयंती का भी उत्सव आने वाला है। तो आज से अगले 5 दिनों के लिए हम सुबह 8 बजे बलराम जी पे कथा करेंगे, तो आज उसको हम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले, क्योंकि एकादशी में हम प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, तो प्रभुपाद लीलामृत से हम पाठ करेंगे कुछ समय के लिए। तो प्रभुपाद लीलामृत में प्रसंग चल रहा है एक मंदिर हो। प्रभुपाद लीलामृत द्वितीय भाग, प्रभुपाद भारत में आ चुके हैं और बात है मुंबई मार्च 20, 1974 के। शिष्य और इस्कॉन के आजीवन सदस्य प्रभुपाद के पुलिस आयुक्त द्वारा हरे कृष्णा लैंड में मंदिर निर्माण के लिए अनुमति ना दिए जाने को लेकर उसका सामना करने के विषय में विचार विमर्श करते रहे। विडंबना यह थी कि इस्कॉन की भूमि एक और एक विशाल सिनेमा हॉल से लगी हुई थी, जहां हर दिन संध्या समय चलचित्र आरंभ होने के पूर्व और बाद यातायात की लंबी लाइन लग जाती थी। भौंपू बजाती हुई मोटर गाड़ियां और सैकड़ों पैदल चलने वालों के कारण बहुत कोलाहल और भीड़ भाड़ हो जाती थी। यदि पास पड़ोस के लोगों और सरकार को एक सिनेमा घर होना सहज था, तो निष्पक्ष भाव से देखने पर वे कीर्तन को उपद्रव कैसे कह सकते थे। जहाँ हमारा अभी जुहू का मंदिर है, वहाँ बताया जा रहा है, वहाँ पे एक सिनेमा हाउस भी था और सिनेमा हाउस में सुबह शाम शोज चलते थे और बहुत भीड़ हो जाती थी, ट्रैफिक हो जाता था, तो वो लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं लगता था। लेकिन हरे कृष्णा मंदिर में कीर्तन जो होता था उसको वो कहते थे उपद्रव मचाया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। अपने भाषणों में प्रभुपाद मुख्य रूप से सरकार से अनुमति ना मिलने के मुद्दे को लेते थे, फिर भी वे इससे अधिक व्यापक सिद्धांत पर भी बल देते थे कि किस प्रकार कलयुग में सरकारें धार्मिक जीवन पर प्रतिबंध थोपती जा रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार की नीति यह है कि धर्म जनता की बुद्धि को मंद करने वाला है। उसका मानना है कि धर्म एक भाव प्रवणता है, वह बूचर खाना खोलना चाहती है और उसमें इन चंचल भटकती गायों का वध करना चाहती है। उसका निष्कर्ष यह है कि धर्म की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसका निर्णय है कि इन मंदिरों में को और इस भजन को प्रोत्साहन ना दिया जाए। उनकी दृष्टि में यह बेकार है। ये प्रभुपाद प्रवचन में कहते थे कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर उन्होंने बोला कि धर्म तो ऐसे कहते हैं कि इट्स ओपियम ऑफ द मासेस, यू नो, ये तो एक जनता की बुद्धि को मंद करने के लिए है, भावुकता है और इसमें कोई ज़्यादा इसमें दम नहीं है। उससे इसको छोड़कर सरकार बूचर खाने खोल रही है जहाँ की गायों की हत्या की जा रही है। प्रभुपाद के कुछ मुंबई के मित्रों ने सुझाव दिया कि वे राजनीतिक दल जनसंघ के माध्यम से कार्य करें, जो हिंदुत्व का समर्थक था, और इस प्रकार उसके साथ मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाए। अच्छा सजेशन है, RSS के साथ जुड़ जाइए, जनसंघ के साथ जुड़कर एक पॉलिटिकल फ्रंट खड़ी कर दें। क्या लगता है प्रभुपाद ने क्या बोला होगा? किंतु प्रभुपाद इस अवसर का लाभ प्रचार के लिए उठाना चाहते थे। देखिए, प्रभुपाद प्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई पॉलिटिकल अलायंस की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हम जोरदार प्रचार करें, बड़े बड़े हॉलों में बैठकें करें, जिससे जनता की समझ में आ जाए कि कम से कम यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन छापाओं की विभिन्न विषयों पर हमें व्याख्यान होंगे, तब मैं आऊंगा और बोलूंगा। उस बैठक में एक भले आदमी को अध्यक्ष बनाओ, जनमत तैयार करो ताकि सब लोग आएं और हस्ताक्षर करें कि हाँ मंदिर होना चाहिए। हम शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर इसे सिद्ध करेंगे, जैसा कि भगवद्गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। यह भजन शब्द जो भजन्ते से निष्पन्न है, सुकृतिना अर्थात धर्मिष्ठ मनुष्यों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इसका विपरीत अर्थक शब्द दुष्कृतिना अर्थात दुष्टात्मा पुरुष है। अतः भजन धर्मनिष्ठों को के लिए जिसकी जैसा कि भगवद्गीता की संस्तुति है, अतः भजन धर्मिष्ठों के लिए है जैसा कि भगवद्गीता की संस्तुति है, और भगवद्गीता का सम्मान सारे संसार में है। इतना होने पर भी उसने भजन को उपद्रव कहा है, वह कितना दुष्ट और मूर्ख है। ये बात हो रही है जज के, जिन्होंने पास किया था कि मंदिर हम नहीं बना सकते, उसको प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो दुष्कृतिना है, मूर्ख और दुष्ट है, फूल एंड रास्कल। वह कितना दुष्ट और मूर्ख है, हमें स्पष्ट करना है कि भजन का बड़ा महत्व है। भगवद्गीता का उद्देश्य सभी संसारिक समस्याओं का शमन करना है, किंतु भारत के लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे शिष्य भी बोल सकते हैं और कह सकते हैं, आप हमारे साथ आइए, हम विदेशी हैं, किंतु हम जानते हैं कि कृष्ण ना इसके लिए है ना उसके लिए है, तो आप भारतीय पीछे क्यों रह रहे हैं? आप अपनी संस्कृति को स्वीकार करें। हमने कृष्ण को स्वीकार किया है, और कृष्ण कहते हैं कि कीर्तन करने मात्र से सभी प्रदूषणों से मुक्ति मिल सकती है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? यहाँ क्या कमी है? आपके शास्त्र में है कहा गया है, और हमने उसे अंगीकार कर लिया है, और हम पहले से ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, तो आप इतने उदासीन क्यों हैं? आप तो शिक्षित हैं, शिष्ट हैं, इसी तरह का प्रचार करना है। आज के समय भी इस प्रचार की आवश्यकता है। तो हम यहीं पे विराम देंगे, बहुत रोचक प्रसंग है लेकिन समय की कमी है। अब हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 15 अध्याय का 21वां श्लोक, बलराम जी की कथा करेंगे, और इस अध्याय का नाम है धेनुकासुर का वध। राम राम महाभाहो, कृष्ण दुष्ट निर्भणा, इतो विदुरे सुमहत् वनं तालालि संकुलं। राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्टर निभरण, इतो विदुरे सुमहत् वनं तालालि संकुलं। धन्यवाद। शब्दार्थ राम राम, हे राम, महाबाहो, हे शक्तिशाली भुजाओं वाले, कृष्णा, हे कृष्णा, दुष्ट निवारण, दुष्टों का अंत करने वाले, इतः यहाँ से अविदुरे, दूर नहीं, सुमहत् अत्यंत विस्तृत, वनम जंगल, तालाले ताड़ वृक्षों की पंक्तियों से, षटकुलम परिपूर्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ग्वाल वालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पंक्तियों से परिपूर्ण है। नष्ट प्रायशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट के। हरे कृष्ण। तो बलराम जयंती के उत्सव पर हम प्रयास करेंगे बलराम जी का गुणगान करने के लिए। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि मठ में या मंदिरों में उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भक्त जीव अपने अंदर सेवा की भावना को उत्पन्न कर सके, सर्विस एटीट्यूड डेवलप कर सके। तो बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, उत्सवों की श्रृंखला शुरू होने वाली है, खूब सेवा का अवसर होगा। हम अपनी चेतना को उठाएं, उत्कृष्ट करें और इन उत्सवों का पूरा लाभ उठाएं और भगवान और गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो बलराम जी के बहुत से प्रसंग हैं श्रीमद् भागवतम में, और बलराम जी स्वयं भगवान हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भागवतम का परिभाषित सूत्र है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसमें जो भगवान शब्द है ये कृष्ण और बलराम दोनों के लिए है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं दोनों के लिए है। और ऐसे भी एक विदेशी प्रचारक आए थे, उन्होंने इसको और सरल बता दिया समझने के लिए, बोले कृष्ण अस्तु, अस्तु मीन्स हम दोनों, अस्तु भगवान स्वयं, हम दोनों भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार हैं जो कि कृष्ण की सहायता करते हैं उनकी लीलाओं में। भगवान अपना विस्तार बलराम जी में करके फिर भगवान अपने आनंद में मग्न हो जाते हैं। और बलराम जी का क्या कार्य है कि कृष्ण की लीलाओं में सहयोग भी देना और उसके साथ सारी सृष्टि करना, पूरा सृष्टि ये बलराम जी करते हैं। जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत में है वो बलराम जी से है सब कुछ। लेकिन बलराम जी कहाँ से आए हैं? कृष्ण से है। अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो बलराम जी इस ढंग से कृष्ण की सेवा करते हैं, वो सेवक भगवान है और खुद वो कृष्ण के लीलाओं में सहयोग देते हैं। और फिर हमने चार तरह से विस्तार करके महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, रुक्षिरोदक्षाई विष्णु बन गए, इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। बलराम जी का एक नाम शेष भी है। कहा जाता है कि कद्रु के कद्रु जो कि रोहिणी बनकर आती हैं, उनके कई पुत्र थे सर्प, और सभी सर्प सारे के सारे द्वेषी थे, लेकिन एक जो सर्प थे शेष, वो किसी से द्वेष नहीं करते थे। उन्होंने खूब तपस्या की और भक्ति की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। और कृष्ण ने पूछा, बोलो क्या चाहिए? तो बोले, मुझे आप कुछ वरदान में मांग रहे हैं, तो बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो भगवान ने वरदान में उनको सेवा दी। क्या सेवा दी? कि तुम नीचे सारे के सारे ग्रहों का भार उठाओ और मेरा गुणगान करो। तो जब ये प्रश्न मुझे सेवा मिली तो फिर शेष जी ने प्रश्न पूछा कि पहले ये बताइए कि कब तक गुणगान करना है, और दूसरा ये बताइए कि मैं तो सारे ग्रहों को उठा लूँगा, मुझे कौन उठाएगा, मेरा आधार क्या होगा? तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, तुम तब तक गुणगान करो जब तक मेरे गुण समाप्त नहीं हो जाते, गाते रहो, और तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारा आधार बनने के लिए मैं कछुआ बन के आऊँगा। तो हम देखते हैं जब भगवान किसी को सेवा देते हैं तो भगवान का भार और बढ़ जाता है, कि सेवा करवाने के लिए भगवान को खुद सारी शक्ति देनी पड़ती है। तो बलराम जी को जो बल भी है वो कृष्ण से ही प्राप्त हो रहा है। और हम सब साधकों को, बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, जो कि जीवात्माओं को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने का माध्यम बनते हैं। संकर्षण, संकर्षण का दूसरा अर्थ ये भी है कि बलराम जी देवी जी के गर्भ से स्थानांतरित हुए थे रोहिणी जी के गर्भ में, तो उसके लिए अब इसलिए भी इनका नाम संकर्षण है। बलराम जी को प्रकाश विग्रह कहा गया है, एक बद जीव जो अंधकार में डूबा हुआ है इस भौतिक जगत के, उसके लिए बलराम जी कृष्ण को प्रकाशित करते हैं। बलराम जी के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान। उस दिव्य ज्ञान के आधार पर हम अपने सारे संशय को काट सकते हैं, लेकिन इस दिव्य ज्ञान रूपी तलवार को उठाने के लिए जो बल चाहिए वो बल हमें बलराम जी से प्राप्त होगा। बिना बल के हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। बल राम, बल का अर्थ है आध्यात्मिक बल और राम का मतलब है आनंद। बिना आध्यात्मिक बल के हम कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। बौद्ध जगत में हर कोई ये सोचता है मनी पावर, मसल पावर, इस सब को लेकर हम आनंद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन असली शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। बलराम जी का एक और नाम है बलभद्र। ये ऐसा बल है जो ऑल ऑस्पिशियस है, भद्र है। बलम बलवताम चाहम, भगवान गीता में बताते हैं। इस बल से हम सबका अपना भी और सबके लिए सबका मंगल कर सकते हैं। ये है बलभद्र। तो यही कृष्ण बलराम जब 6 वर्ष के हो गए, कृष्ण जब 6 वर्ष के हो गए, बलराम जी उनसे लगभग 1 साल बड़े थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए तो वो पौगण अवस्था में प्रवेश करते हैं। पहली अवस्था है कुमार अवस्था 5 वर्ष तक, और 6 वर्ष से 10 वर्ष तक है पौगण अवस्था। पौगण अवस्था में हालांकि भगवान का देह दिव्य है, लेकिन भौम लीला में ऐसा लगता है कि भगवान के दिव्य देह में कुछ परिवर्तन आ रहा है। भगवान के कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं, पक्ष बाहर निकलता है, और भगवान थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं कृष्ण। अब वो छोटे बच्चों की तरह गायों के पीछे नहीं भागते, उनके पूंछ पकड़ के या मिट्टी पे नहीं लौटते। और जब इनको देखा कि अब कृष्ण बलराम 6 वर्ष के हो गए हैं, तो सारे ब्रजवासियों ने एक इष्ट गोष्ठी की, नंद उपानंद सब मिलकर बैठे कि हमारे कृष्ण बलराम अब बड़े हो गए हैं, अब इनको जिम्मेवारी बढ़ानी चाहिए। अब इनकी क्या जिम्मेवारी है? पहले बछड़े चराने ले जाते थे, अब इनको गायों की जिम्मेवारी देनी चाहिए, है ना। देखिए कृष्ण बलराम 6 या 7 वर्ष के थे, उनका कैरियर सेट हो गया था। उनको क्या करना है? यहाँ पे व्यक्ति बेचारा, माता पिता भी चिंता में रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर करेगा, MBA बनेगा, पता नहीं इसके बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोचिंग में कैसे एडमिशन होगा नहीं होगा, कहाँ से एजुकेशन लोन लेंगे, कितनी देखिए सरदर्दी है, सेटल कैसे होगा। यहाँ ऑलरेडी सेटल्ड है ना, बस कृष्ण बलराम को गायें चरानी है, उनको मालूम है ना। तो वृंदावन का यही ऐश्वर्य है, वृंदावन में अनाज था, कृषि थी और गायें थी, बस और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और आजकल हम इन दोनों को नेग्लेक्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पर हमने अपने लाइफ को कितना पेचीदा बना दिया है। तो मीटिंग हुई, बोला ठीक है अब कृष्ण बलराम को गायों की जिम्मेवारी देंगे। किसी एक ने प्रश्न उठाया, वे छोटे बालक हैं, इतनी गायें हैं, कितनी गायें थी नंद महाराज के पास? 9 लाख गायें, कैसे छोटे छोटे बच्चे 6-7 वर्ष कहाँ संभाल पाएंगे? ये बात भी हाँ समझने वाली है, कैसे इतनी ज़्यादा गायें को छोटे से बच्चे संभाल पाएंगे छोटे छोटे। फिर किसी ने बोला कृष्ण को नियंत्रण करने में कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कृष्ण का सभी जीवों से प्रेम है वृंदावन में, और सभी के सभी जीव कृष्ण से प्रेम करते हैं, और कृष्ण सभी को नियंत्रित करते हैं अपने प्रेम से, और कृष्ण को भी अच्छा लगता है कि भक्त उनको प्रेम से नियंत्रित करें, और कृष्ण भी भक्तों को प्रेम से नियंत्रित करते हैं। ये है वृंदावन। आध्यात्मिक जगत में हर कोई नियंत्रित होना चाहता है, और भौतिक जगत में हर कोई नियंता बनना चाहता है, कंट्रोलर बनना चाहता है, हर कोई भोक्ता बनना चाहता है। इसीलिए घर घर में लड़ाइयाँ हैं, इसीलिए हमारा मन हमेशा उद्विग्न रहता है। हम भोक्ता बनना चाहते हैं, नियंता बनना चाहते हैं, लेकिन वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में हर किसी को लगता है कि मेरे को नियंत्रित किया जाए, मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी की सेवा कर सकूं, वो सेवा के अवसर ढूंढते हैं। कृष्ण बलराम जब गायें चराने जाते थे तो हाथ में तो छड़ी लेके चलते थे, तो गायों को अगर छड़ी से नियंत्रण नहीं कर दिया तो छड़ी क्यों ले जा रहे हैं? छड़ी किस लिए? छड़ी से वो गायों को नियंत्रित नहीं करते थे, छड़ी केवल अगर थक गए तो खड़े होने के लिए या खेलने के लिए, छड़ी से तरह तरह के गेम खेलते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जब ग्वाल वाल का वेश डालते थे, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद क्या करते थे, छड़ी लेते थे। अद्वैताचार्य ने बोला अगर तुम समझते तुम कृष्ण हो, बाल बाल हो, तो इस छड़ी को ऊपर घुमा के दिखाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, छड़ी ली ऊपर घुमाया एकदम बार बार ऐसे ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से। तो इस ढंग से वो छड़ी से खेला करते थे, छड़ी से कोई गायों के ऊपर कुछ, वो गायों के ऊपर छड़ी नहीं चलाते थे, है ना। हम में से शायद किसी को अनुभव होगा नहीं गाय चराने का, है किसी को है? दूर भगाने का अनुभव है, गाय चराने का अनुभव नहीं है। तो अक्सर गाय चराने के लिए गायों के पीछे रहना पड़ता है और गायों को आगे चरा के छड़ी से चलाया जाता है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में धक्का लगाने का अनुभव होगा, पीछे से गाय चराने का अनुभव नहीं होगा। नहीं, कृष्ण बलराम को आवश्यकता नहीं होती थी गायों को आगे ही रखे, क्योंकि गायें जब कृष्ण का सुंदर रूप देखती थी, बलराम जी का सुंदर रूप देखती थी, वहीं रुक जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। तो छड़ी माने हैं थोड़ी आगे जाएंगी। तो ग्वाल वाला बोला कि कृष्ण बलराम आप आगे जाओ, अपने आप गायें पीछे आएंगी। तो कृष्ण बलराम आगे जाते थे, फिर सारी की सारी गायें पीछे चलती थी। तो जब कृष्ण बलराम बाहर निकल रहे हैं 9 लाख गायों को लेकर, तो यशोदा माता ने अपने हाथ से कृष्ण और बलराम के लिए जूते बनाए, बोले इनको जूतों को डाल के जाओ, छोटे छोटे बच्चे हो। तो भगवान ने क्या कहा, इम्पॉसिबल संभव नहीं है, 9 लाख गायें हैं, वो ऐसी की ऐसी जाएं कि मैं कैसे जूते डाल सकता हूँ। तो भगवान ने जूते डालने से मना कर दिया। अगर यशोदा माता को गायों के लिए भी जूते बनाने पड़ते तो कितने जूते बनाने पड़ते, 18 लाख पेयर बनाने पड़ते हैं ना। कोई यहाँ पे है जूतों का सप्लायर, बहुत अच्छी मार्केट है, 18 लाख जूते, हाँ 18 लाख पेयर्स कह रहा हूँ, 18 लाख जोड़ियाँ। तो भगवान नंगे पैर चलते थे ब्रज में। जब देखा गायों ने कि भगवान नंगे पैर चल रहे हैं, तो वृंदावन के जितने भी पशु थे उन्होंने इष्ट गोष्ठी की, गाय मोर बंदर हिरण सब इकट्ठे हो गए, बोले भैया भगवान कृष्ण बलराम नंगे पैर चल रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो बोला ये नंगे पैर तो चल रहे हैं, इससे 2 फायदे हुए। पहला, जो भगवान के चरण चिन्ह ब्रजभूमि में पड़े वो उस ब्रजभूमि की शोभा थी, और सारे के सारे पशुओं ने मिलकर और सारे के सारे ब्रजवासियों ने मिलकर ये निर्णय लिया, कोई भी इन चरण चिन्हों के ऊपर अपना पांव नहीं रखेगा और कोई भी इसको टाप के नहीं जाएगा। ये एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल बन गया था वृंदावन में। और दूसरा इसका लाभ ये हुआ कि भगवान नंगे पांव जा रहे हैं तो गोपियों के लिए एक मेडिटेशन हो गया, है ना। गोपियां हमेशा चिंतित रहती थी, अरे इतने कोमल कोमल पांव हैं भगवान के और कैसे वृंदावन के जंगलों में जाएंगे, कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं, कैसे उनको चुभेंगे। तो गोपियां हमेशा यही मेडिटेट करती रहती थी। तो भगवान इस ढंग से नंगे पांव गायों को लेकर चराने जाते थे। कृष्ण और बलराम निकल गए हैं, साथ में ग्वाल बाल हैं और गायें हैं, उस समय वर्षा नहीं हो रही है वृंदावन में और निकल रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है वृंदावन में, बहुत सुंदर, मीठी मीठी हवा चल रही है, सुगंध आ रही है, पानी में झरनों के गिरने की आवाज़ आ रही है, कोयल खूखू कर रही है, पक्षी चिड़चिड़ा रहे हैं। श्री श्री राधा राधे रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बहुत सुंदर वातावरण है और सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं और पक्षियों की आवाज़ की नकल उतार रहे हैं। तभी एक सिंह गरजता है और सिंह के दहाड़ से छोटे पशु डर के भागते हैं। तो ग्वाल बाल क्या करते हैं, मजाक करके उसी पशु की तरह नकल भागने की नकल करते हैं। इस ढंग से सब खेल को चल रही है, बहुत सुंदर वृंदावन का वातावरण है। जब ये पढ़ते हैं हम कृष्णा बुक में और भागवतम में, हम कल्पना करते हैं कैसा होगा उस समय का वृंदावन। अब तो वृंदावन नहीं, वृंदा भवन, वृंदा भी निरा भवन ही भवन है सब। और जो तो खाड़ी से जगह है थोड़ी सी, अभी हम गोवर्धन में गए थे तो वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स खोल रहे हैं, गोल्फ कोर्स, गोल्फ खेलने के लिए, है ना। कितने वन हटा दिए, पेड़ हटा दिए और वहाँ पे गोल्फ खेलने की सुविधा दी जा रही है ना। वृंदावन को शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब कृष्ण बलराम गायों को चरा रहे थे, बहुत सुंदर वातावरण, रमणीक वातावरण के बीच में वो चल रहे थे। और फिर बीच में कृष्ण ने बलराम जी का बहुत गुणगान किया। कृष्ण जी बलराम को देखकर बोलते हैं कि कहते हैं अब यह धरती परम धन्य हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास तथा झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्ष तथा लताओं को स्पर्श किया है। आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के गुणगान में कह रहे हैं। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुण गोपियों को अपने दोनों भुजाओं में भर कर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहते हैं। इस प्रकार से भगवान बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वृंदावन में इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं और उन पेड़ों के इतने बड़े बड़े फल हैं कि कृष्ण बलराम को देखकर वो नीचे झुक गए, जैसे कि उनके चरण स्पर्श करना चाहते हों। तो सभी के सभी जीव अपना प्रेम और अपना आदर व्यक्त कर रहे थे कृष्ण और बलराम के प्रति। और इस तरह से खेलते खेलते बलराम जी थोड़ा थक गए और बलराम जी ने एक ग्वाल बाल की गोद पे अपना सिर रख दिया और सर रख दिया और कृष्ण आके उनकी टांगों का मालिश करने लगे। फिर इसके बाद देखा, कृष्ण ने देखा कि दूसरे ग्वाल बाल खेल रहे हैं तो भगवान उनके साथ खेलने चले गए। उसके बाद कृष्ण थोड़ा थक जाते हैं, कृष्ण किसी दूसरे ग्वाल बाल के गोद पे अपना सिर रखते हैं और दूसरे ग्वाल बाल आके उनकी सेवा करते हैं, उनको पंखा चामर चुराते हैं। तो इस ढंग से कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और तरह तरह से वो आनंद उठा रहे थे। तभी कृष्ण और बलराम के पास उनके तीन संगी आते हैं, सुबल, स्तोक कृष्ण और श्रीदाम, और बड़े प्रेम से कहते हैं, कहते हैं राम राम महाबाहो, हे बलराम आप महाबाहो हो, आपकी बाजुओं में बहुत शक्ति है। कृष्ण दुष्ट निर्बहणा, और हे कृष्ण तुमने कितने ही दुष्टों का संगार किया है। ये तो अविदुरे, यहाँ से बहुत कम दूरी पर सुमहद वनम ताला तला संकुलम, ताल वन है बहुत कम दूरी पर, यहीं से पास में एक ताल वन है। और वो बलराम जी को बोल रहे हैं कि आप महाबाहो हो, आपकी बाजू में बहुत शक्ति है, और कृष्ण को बता रहे हैं आपने कई दुष्टों का संहार किया है, पास में ही बहुत विशाल जंगल है जो कि ताल वृक्षों की पंक्तियों से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे इसके तात्पर्य में बताया गया है, आचार्यगण बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तालवन मथुरा तथा गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच स्थित है। ये हरिवंश पुराण और दूसरे पुराणों में लिखा गया है, मथुरा और गोवर्धन पर्वत के बीच में। तो इस समय भगवान वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। सुबल, श्रीदाम और स्तो कृष्ण आए और बोले राम, भगवान बलराम को और कृष्ण को बता रहे हैं कि बहुत नज़दीक में ही तालवन है जहाँ की बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। और फिर उन्होंने बहुत प्रेमपूर्वक बताया कि वहाँ पे जो ताल वृक्ष हैं इतने ऊंचे हैं जैसे कि आकाश को छू रहे हों, और उनके ऊपर ताल के फल हैं जो कि बिल्कुल पके हुए हैं। किसी ने देखा है ताल फल क्या होता है, किस रंग के होते हैं? आनंद विद्यावन जब हमने पढ़ा कि ब्राइट ऑरेंज, उस समय ब्राइट ऑरेंज बहुत पके हुए, कुछ तो पेड़ से लटक रहे हैं और कुछ नीचे जमीन पर गिर गए हैं, और देखो कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, देखो आ रही है ज्यादा मत सुगंध या तो नाले की स्मेल आ जाएगी बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, और इतनी सुंदर सुगंध आ रही है हमसे रहा नहीं जा रहा, हम उन फलों को खाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है इस ताल वन में एक असुर ने अपना हेडक्वार्टर्स बना के रखा हुआ है, और वो असुर गधे के रूप में रहता है, वो कहलाता है धेनु का असुर, और बहुत ही भयंकर असुर है। वो असुर इतना भयानक है कि उसके अंदर प्रवेश करते ही उस जंगल को सारे के सारे पशु और पक्षियों ने खाली कर दिया है, और अभी तक कोई भी व्यक्ति वहां पे प्रवेश नहीं कर पाया, और अभी तक किसी ने इस ताल फल को चखा नहीं है। और हैरानी की बात यह है ये जो असुर है ये खुद भी नॉन वेजिटेरियन है ये भी फल नहीं खाता, तो ना वो फल खा रहा है ना किसी को खाने दे रहा है, जमीन पे पड़कर फल सड़ रहे हैं। यह है आसुरी प्रवृत्ति, ना तो मैं भोगूंगा ना किसी और को भोगने दूंगा, जस्ट मैं इसका, ये मेरा अधिकृत क्षेत्र है, कोई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो ये हम उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो हम वहां जाते हैं और वो फल खाना चाहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाबा बताते हैं कि ग्वाल बाल भगवान से ये प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि वो भगवान को और बलराम जी को उकसा रहे हैं कि आपने इतने असुरों को पहले ही मारा है, एक और असुर मारो। ग्वाल वालों के लिए तो ये बड़ा मजाक होता था, है ना, खेल होता था कि देखते भगवान कैसे मारते हैं, है ना, कभी बकासुर को कभी अगासुर को। अगासुर को जब उन्होंने देखा कितना बड़ा सांप मुंह खोल के बैठा हुआ है, उनको मालूम है कुछ गड़बड़ है, तो बोले कृष्ण बचाए लगे, चलो देख के आते हैं क्या, है ना, और खेलते खेलते अंदर घुस गए। उस अगासुर से देवतागण घबराते थे जिनके पास अमृत था, फिर भी वो डरते थे। लेकिन ग्वाल वाल हंसते हंसते अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए कि कृष्ण तो है, देखें आज क्या होता है। इसलिए उन्होंने सोचा ये तालवन है, यहाँ पे वो धेनु का सुर है, इसका वध करवाते हैं और मजा आएगा, है ना, कृष्ण पता नहीं कैसे मारेंगे, बलराम कैसे मारेंगे, देखें। और इसलिए उकसा रहे हैं, राम राम महाबाहो, तुम्हारी बाजू में तो बहुत शक्ति है। और कृष्ण को कह रहे हैं आपने तो बहुत असुरों का वध किया है, ना, इससे पहले बलराम जी ने किसी असुर का वध नहीं किया, ये उनका डेब्यू होगा अभी, है ना, पहली बारी वो असुर का वध करेंगे। तो इसमें बताया अरे महाबाहो तुम्हारे बाजू में तुम बहुत शक्ति है, आप भी असुरों का वध कर सकते हो। लेकिन यहां पर दूसरा उनका उद्देश्य यह था कि वो चाहते थे कि भगवान को वो ताल जो के फल हैं वो अर्पण करें। अब इसे बहुत बड़ा रहस्य छपा हुआ है और इसे मालूम चलेगा कि वृंदावन में भगवान और भक्तों की क्या मानसिकता होती है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो बलराम जी से और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें वो फल खाने हैं। एक तरीके से भगवान से हम कोई वस्तु मांग रहे हैं, भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर मान रहे हैं कि हमें फल खाने हैं, हमें फल खिलाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ब्रजवासी हैं, बहुत उन्नत भक्त हैं, वो वास्तव में क्या चाहते हैं कि भगवान असुर का वध करके उस फलों का भोग करें। लेकिन बता ऐसे रहे हैं जैसे कि वो स्वयं भूखे हैं, क्योंकि उनको लगा कि हम सीधा बोलेंगे कि भगवान चलो तानवल में चलते हैं, हम आपको फल अर्पण करेंगे, आप भोग लगाना। तो भगवान जाते हैं, बोले मैं कई और चीज़ खा लूँगा, क्या जाऊँ तालवन में। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें भूख लग रही है। तो उनको लगा कि भगवान तब चलेंगे जब हम बोलेंगे कि हमें चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए वास्तव में उनको भूख लग भी रही थी, उस भूख में जहाँ पेट में अग्नि जल रही हो, मुंह सूख रहा हो, वो क्या सोच रहे थे, हम कैसे भगवान को भोग लगाएंगे। हमें जब भूख लगती है तो हम क्या सोचते हैं कि राधिका रमन जी को प्लेट जानी चाहिए, क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है कि हमें विचार नहीं आता, हमें नहीं आता। लेकिन ब्रजवासियों को ये विचार आता था, ब्रजवासी यही सोचते थे कि अगर हम बोलेंगे हम आपको अर्पण करेंगे तो भगवान नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे हाँ हमें भूख लग रही है तो भगवान निश्चित रूप से जाएंगे। तो बोला कि भूख लग रही है, हमें फल खिलाइए। एक तरीके से वो अपनी भूख को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है क्या भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान समझ नहीं गए होंगे ये ड्रामा कर रहे हैं, है ना, वास्तव में मुझे भोग अर्पण करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमें भूख लग रही है, क्या कहना आपका, भगवान जाने होंगे नहीं जाने होंगे, नहीं जाने होंगे, हैं जाने होंगे। तो जाने होंगे तो बोला क्यों नहीं, ऐसे क्यों बोलते हो, मैं मालूम है तुम्हारी और कोई चाल है। भगवान का प्रेम उनके ज्ञान को ढक देगा, मैंने नहीं मालूम चला कि वो ऐसा चाहते हैं। बताया गया कि भगवान जानते हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, और ये जानने से भगवान का प्रेम उनके प्रति और बढ़ जाता है। और भगवान ने सोचा अगर इनको मुझे फल अर्पण करके अच्छा लगेगा तो मैं निश्चित रूप से फल खाऊंगा, अगर मेरे खाने से इनको आनंद मिलता है तो निश्चित रूप से मैं फल खाऊंगा। तो भगवान भी फलों का भोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके मित्रों को आनंद मिलेगा, और मित्र भी कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है क्योंकि इससे हमें भगवान को फल अर्पण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये है आदान प्रदान भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में, है ना, हमारे लिए अचिंत्य है। जान हृदय कृष्ण प्रेम करें उदय, तान क्रिया मुद्रा व्यक्ति न हो जाए। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम मुद्रा उदित हो जाता है उसकी क्रियाओं को हम समझ नहीं सकते। तो प्रवेश करते हैं, कृष्ण और बलराम ने जब ये सुना तो वो मुस्कुराए। विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं वो इसलिए मुस्कुराए कि गधा, गधे में भी इतनी शक्ति हो सकती है, चलो देखते हैं, एक नया टाइप का असुर है, तो देखते हैं कौन है। तो इस बारी भगवान जब एंटर करते हैं कृष्ण बलराम, तो बलराम जी को मौका देते हैं, चलो तुम करो। क्यों देते हैं, इसके बारे में गर्ग संहिता में बताया गया है कि जो धेनु का सुर है ये वास्तव में बलि महाराज का पुत्र था। बलि महाराज जो कि भगवान के भक्त हुए, और बलि महाराज को भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। और ये बलि महाराज का पुत्र एक असुर था, ये बहुत सी स्त्रियों को लेकर वन में भोग ऐसे ही आनंद उठाने चला गया, भौतिक सुख भोगने चला गया। और जब वन में वो स्त्रियों के साथ नाच रहा था तो बहुत शोर मचा रहा था, तो वहां पर वन की जो शांति थी वो भंग हो गई। और तो वहां पर दुर्वासा मुनि थे जिन्होंने उनको शाप दिया कि तुम गधों वाला काम कर रहे हो, अगले जन्म में तुम गधे बनोगे, गधे के रूप में असुर बनोगे। तो वो धेनु का असुर बना, लेकिन कृष्ण ने उनका वध नहीं करना चाहते थे। तो बलराम जी आ गए। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम ने देखा इतना ऊंचा ताल का वृक्ष, उस पर ताल के फल लगे हुए हैं। बलराम जी ने जोर जोर से उसको हिलाया, जोर जोर से। आप कल्पना कीजिए बलराम जी की आयु 6-7 वर्ष की हो गई, इतना ऊंचा ताल का वृक्ष जो कि आकाश को छू रहा है, बलराम जी ने उसको जोर जोर से हिलाया। जब जोर जोर से हिलाया तो क्या हुआ, बड़े बड़े ताल के वृक्ष गिरने लगे, ढाक ढाक ढाक, जोर जोर से आवाज आई। इतनी ऊंचाई से बड़े बड़े ताल के वृक्ष पेड़ फल गिरेंगे तो कितनी आवाज आएगी। जब इतने बड़े बड़े फल गिर रहे हैं तो धेनु का उसको लगा कौन है, किसकी हिम्मत हुई, अभी तक कोई यहाँ आया ही नहीं और ये पेड़ को हिला रहा है और फल गिर रहे हैं। धेनु का उसको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और इतना भयंकर था, इतना विशाल था, तेजी से दौड़ता हुआ आया। भागवतम लिखा गया इतनी तेजी से दौड़ा कि पृथ्वी पर भूचाल आ गया वजह से। और तेजी से दौड़ते हुए देखा, उसने देखा एक बालक वृक्ष को हिला रहा है, उसने अपने पिछली दो टांगों से बलराम जी के वक्ष स्थल पर आक्रमण किया, जोर से मारा। क्या हुआ बलराम जी को, कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं खड़े रहे। बलराम जी में इतनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सर पे उठाया हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब बलराम जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, धेनु का सुर को और क्रोध आया, फिर भाग कर गया और फिर भाग के वापस आया और जोर से मारा। बलराम जी फिर वैसे खड़े हैं, उसको और क्रोध पड़ गया। अब दोबारा आया, अब बलराम जी कहते हैं समय आ गया, इसका भारी बोल कर देना चाहिए। जैसे वो आया, बलराम जी ने क्या किया, आनंद वृंदावन चंपो में लिखा है भगवान बलराम जी ने अपने बाएं हाथ से उसकी पिछली टांगों को पकड़ा और बाएं हाथ से यूं घुमाया, ऐसे तो नहीं किया होगा बट बहुत जोर से आवाज आई होगी। कल्पना कीजिए 6 वर्ष के बालक और इतना विशाल असुर, और केवल बाएं हाथ से पकड़ के और ऐसे घुमा के, इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया कि घुमाते 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 ही उस असुर ने प्राण त्याग दिए और जोर से फेंका, इतना ऊंचा फेंका, इतना ऊंचा फेंका कि ताल वन में जो सबसे ऊंचा वृक्ष था उसके ऊपर जाकर गिरा। और वो असुर इतना भारी था, इतने ऊंचे वृक्ष के ऊपर, कभी थ्रो किया किसी ने, हम बड़े असुर को एक छोटा पत्थर ही ले लें और कितना ऊंचा फेंक सकते हैं, और बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से, और पूरा जोर लगा के कितना ऊंचा हम फेंक पाएंगे। लेकिन बलराम जी ने बाएं हाथ से, है ना, बाएं हाथ का खेल। अक्सर देखे आप कृष्ण लीला में पढ़ेंगे, भगवान ने असुर ने असुरों को बाएं हाथ से मारा है ना। केसी राक्षस भी आया था तो भगवान ने अपना बाएं हाथ उसके मुंह में घुसा दिया और वो इसी को एक्सपेंड करके उसको मार दिया। गोवर्धन पर्वत भगवान ने कैसे उठाया, बाएं हाथ की छोटी उंगली में। ये नहीं कि भगवान का बाएं हाथ कमजोर है, अंगानी अस्य सकल निर्मति मंति, भगवान के दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों ही सशक्त हैं। लेकिन नर लीला कर रहे हैं तो दिखाने के लिए, तो बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ से धेनु का सिर की पिछली टांगों पकड़ा, घुमाया और जोर से फेंक दिया, और धेनु का सिर सबसे ऊंचे वृक्ष पे गया और वो वृक्ष गिरा। जब वो वृक्ष दूसरे वृक्ष पे गिरा तो वो वृक्ष भी नीचे गिर गया, वो वृक्ष तीसरे वृक्ष पे गिरा, वो वृक्ष भी गिर गया। एक एक करके सारे या सारे वृक्ष ऐसे गिरने लगे। और जब धेनु का सुर को इस ढंग से उसका वध हो गया तो बाकी जो गधे थे राक्षस, उनका बहुत क्रोध आया, किसकी हिम्मत हो गई हमारे राजा को मार दें। सब के सब ढेंचू ढेंचू करते हुए जोर से आक्रमण करने आए। अब कृष्ण भी मैदान में आ गए क्योंकि धेनु का सुर का वध हो चुका था। दोनों भाइयों के लिए खेल हो गया, उठा उठा के एक आता गधा उसको उठा के यूं फेंकते वहां फेंकते, पूरा खेल हो गया और सारे ग्वाल बाल आनंद आ रहे हैं। बीच बीच में क्या करते, तो कृष्ण सुबल लाठी मार देते किसी को, फ्री फॉर ऑल हो गया, जो मर्जी करो, कोई पत्थर मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है अपने, और सबको उठा उठा के फेंक रहे हैं, एक एक करके सारे गधों का उन्होंने असुरों का वध कर दिया। और अंत में क्या होता है, पूरे के पूरे वृक्ष नीचे गिर गए, सारे के सारे फल नीचे पड़े हुए हैं। तब उन्होंने क्या किया बताते हैं आचार्यगण, फिर फल खाए नहीं। जिसके लिए गए थे वो फल खाए नहीं, क्यों? ग्वाल वालों ने सोचा कि दूषित हो गए हैं, असुरों का खून लग गया, इसको अब नहीं खाएंगे। बस सुगंध से ही पेट भर गया उनका, और इतना बढ़िया आनंद देखा कैसे कृष्ण बलराम सब असुरों को उठा उठा के फेंक रहे हैं, और फिर वहां से वो चले गए। बाद में जो आदिवासी बच्चे आए उन्होंने उसको खाया। और बताते हैं आचार्यगण कि जब ये गधों को मारा और ये बिल्कुल काले बादल के समान इनका रंग था, और उनमें से जो खून निकल रहे थे वो लाल बादल के समान लग रहा था, तो पूरा का पूरा जो दृश्य था बहुत ही रमणीक हो गया। ये भगवान की लीला है, इतनी हिंसा करने के बाद भी, इतने लोगों को पशुओं का वध करने के बाद भी वो दृश्य बड़ा रमणीक है। गधों के ऊपर खून बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि भगवान के हाथ से मारे गए थे। ये है भगवान की सुंदर लीला। तो इस लीला के पीछे बहुत से सिद्धांत छिपे हुए हैं। भगवान जब इस धाम पर उतरते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपने साथ साथ अपने पार्षदों के साथ लाते हैं और धाम को उतार कर लाते हैं। लेकिन इस भूम लीला में वो कई असुरों को भी आज्ञा देते हैं कि आप भी आइए, क्योंकि असुरों के माध्यम से, असुरों की लीला करके भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि ये असुर हमारे हृदय में बैठे हुए अनर्थों के सूचक हैं। जिस ढंग से अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने गीता का संदेश दिया, उसी ढंग से इन असुरों का वध करके भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपने अनर्थों से छुटकारा प्राप्त कर सके। और आचार्य गणों ने इसके ऊपर अलग अलग टीकाएं दी हैं। तो धेनुकासुर के इस वध में भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, धेनुकासुर का इस वध इंगित करता है कि उसकी मानसिकता, उसकी मानसिकता क्या थी, उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं थी। वो समझ नहीं पाया कि इन ताल फलों का क्या प्रयोग करना है। भक्तिनाथ ठाकुर इन ताल फलों की तुलना अलग अलग आचार्यों के द्वारा दी हुई टीकाओं से करते हैं, शास्त्रों पर लिखी हुई टीकाएं, और इस शास्त्रों पर लिखी हुई टीकाओं का उपयोग ना तो वो स्वयं अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, धेनुकासुर ना तो वो फल खा रहा है, ना किसी को खाने दे रहा है। जैसे कि सम्राट ब्राह्मण होते हैं, वो बोलते हैं इन शास्त्रों पर केवल हमारा अधिकार है, हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे, तो वो ना तो किसी को ये टीकाएं पढ़ने दे रहा है, ना खुद अपने जीवन में उतार रहा है, और इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए सारी टीकाएं अपने पास रखी हुई हैं। तो ऐसे नव दीक्षित भक्तों को, कनिष्ठ भक्तों को बोला जाता है भारग्राही, सूचना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन उस सूचना का, शास्त्रों में दिखी हुई बातों का सार अपने जीवन में नहीं उतारते, वो भारग्राही हैं, सारग्राही नहीं है। जो ऐसे भक्त हैं वो बाहर के ग्लैमर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बाहरी चकाचौंध से, डिटेल्स से बड़े ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। जैसे एक थोड़ा समझने वाली बात है, हम लोग भक्ति में नए नए आते हैं तो हम अपने से वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जप करते हैं, कैसे प्रसाद पाते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, उनकी नकल मारते हैं। हम सोचते हैं यही भक्ति है, ऐसे ही करना चाहिए, यही भक्ति है। लेकिन हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका है, और उसके पीछे क्या सिद्धांत है उसको हम नहीं जानते। हम सोचते हैं अगर गुरु बनेंगे ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसी प्रसिद्धि मिलेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे, नहीं। लेकिन ये नहीं जानते कि गुरु सबसे बड़ा सेवक है। तो हम ऐसे कॉपी करेंगे। एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं हमारे इस आंदोलन में, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली बताया, मतलब जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आया, पहले 5 साल तो ऐसे ही बीत गए, नया नया सेफ्रन, नया नया सर मंडवाया, पता नहीं चला क्या होगा, है ना। दूसरे 5 साल में नई नई सेवा मिली उसको करने में निकल गए, अगले 5 साल में नकल मारने में निकल गए कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। मतलब 15 साल के बाद थोड़ी सी बुद्धि आ रही है क्या करना चाहिए। तुम्हारा समय ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि हम बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, डिटेल्स को देखते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर रहते हैं और जो पीछे जो अंदर सार है उसको ग्रहण नहीं करते। तो बताते हैं शिला प्रभुपाद कि जो लोग सार को ग्रहण नहीं करते और केवल बाहरी स्तर पर रहते हैं उनका प्रचार गधों के आवाज की तरह है। क्या बोलते हैं ब्रेन को, क्या बोलेंगे गधों के रेंगने के समान है। कि जो सार को ग्रहण नहीं करते और केवल शास्त्रों में खाली सूचना इकट्ठी करते रहते हैं उनका जो प्रचार है वो गधों के रेंगने के समान है। उनका प्रचार और उनकी शिक्षा। और भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि अगर कोई सार को ग्रहण नहीं कर रहा इसका अर्थ यह है कि वो प्रचार कर रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो ऐसा व्यक्ति कभी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। कि हम प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सूचना दे रहे हैं लेकिन उसके सिद्धांत को समझ कर अपने जीवन में नहीं उतार रहे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रिश्चियन चर्च में भी हम देखते हैं कि जो कैथोलिक्स थे, पहले कैथोलिक्स थे, उनके साथ प्रोटेस्टेंट्स आए। प्रोटेस्टेंट्स क्यों आए? क्योंकि चर्च में जो लोग जाते थे वो बोलते थे हमसे ये पाप हुआ है, इसका क्या निदान बताइए। तो पादरी बोलते थे इतना धन दे दो ठीक हो जाएगा, बस क्यों है क्या है कुछ नहीं बताया। तो फिर कैथोलिक्स ने बोला हमें भी अधिकार है कि आप बताइए तो इसी क्या इसका निदान है। तो एक कैथोलिक्स के बाद प्रोटेस्टेंट्स के बाद फिर कैथोलिक्स के साथ फिर प्रोटेस्टेंट्स आए। तो इसलिए ये सार ग्रही हमें ये मानसिकता केवल इकट्ठा नहीं करना, यानी कि जैसे निगम कल्पत्रो फलम, भागवतम को भी फल बताया गया है। भागवतम में केवल सार ही सार है कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है और इसको सुखदेव गोस्वामी ने चक्कर आगे दिया, गुरु परंपरा के माध्यम से इसने आगे लिया। इसलिए हम सब साधकों का जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़ रहे हैं हमारा कर्तव्य बनता है कि इन शास्त्रों को अच्छे ढंग से समझें, इसके सार को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारें और फिर इस रियलाइज नॉलेज को हम आगे दें। और ऐसा नहीं कर रहे केवल इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं या फिर इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये धेनुकासुर की मेंटेलिटी है। दूसरा इससे ये निकलता है कि धेनुकासुर के अंदर ये गधे वाली मानसिकता थी। वो सोचा था मैं ही भोगता हूँ, मैं ही नियंता हूँ, वो किसी को भी फल भोगने नहीं दे रहा था। जैसे भगवान गीता में कह चुके हैं कि यत करोषि दासिया यत तपस्वी कौन थे तत्कुरु समर्पणा, तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पण करो। लेकिन धेनुकासुर किसी को वो फल अर्पण नहीं कर रहा था, वो अपने पास उन फलों को रख रहा था कि ये मेरे भोग के लिए है। तो क्या हुआ? अंत में उसका सर्वनाश। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हमें प्राप्त होता है, हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता है। हम सोचते हैं इस जीवन में सफलता का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इकट्ठी कर लें। लेकिन जो साधुगण है वो क्या देखते हैं? इस तरह की सफलता का अर्थ है अपने गली में फांसी का फंदा डालना। आपने और भौतिक सफलता प्राप्त की और फंदा, और सफलता प्राप्त की और फंदा। और कितने दुख की बात है, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, भौतिक सफलताओं को इकट्ठा करता जा रहा है, इसका अर्थ है फांसी के फंदे को और कसता जा रहा है, कसता जा रहा है। तो जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। जितना हम भगवान को देंगे उतना हमें भगवान वापस देंगे, ज्यादा देंगे, ताकि हम भगवान को और अर्पण कर सकें। ये गेम चलता रहता है। भक्त लोग भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान घबराइए मत, भगवान अपने पास नहीं रखते, भगवान उसका लाख गुणा करके वापस करते हैं। भक्त लोग और उसको वापस करते हैं कृष्ण को, कृष्ण उसको फिर वापस करते हैं। तो एक कॉम्पिटिशन भक्त और भगवान के बीच में चलता रहता है। और दूसरा है कि अगर हम अपने पास रखेंगे तो क्या होगा कि हम भगवान भी फिर हमें रोक लेंगे, भगवान भी नहीं देंगे। इसलिए असली जो धनाढ्य, असली संपन्नता वो है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है हम भगवान को अर्पण करें। इस लीला में हम देखते हैं कि बलराम जी ने प्रवेश किया और जोर से ताल वृक्ष को हिलाया। बलराम जी आदि गुरु हैं। तो जब भी एक नया भक्त प्रमाणिक साधु के संपर्क में आता है तो उसके जीवन में भी ऐसे उथल पुथल मच जाती है, हिला देते हैं पूरा। अगर भक्तों से सही उपदेश सुना है तो निश्चित रूप से पूरे हृदय में क्रांति आ जाना चाहिए, हिल जाने चाहिए पूरे। जिसको हम ठीक समझते हैं वो मालूम चला गलत है, जिसको हम गलत समझते मालूम चला ठीक है, पूरा हिला देना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से पहली बार मिले तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा फिलॉसफी दिया, पूरा प्रभुपाद बिल्कुल हिल गए। पहले वो गांधी जी के फ्रीडम मूवमेंट में थे, बोले क्या हो रहा है, एकदम हिल गए, सारे का सारा उनके जीवन की जो दिशा थी बदल गई। तो गुरु का यही कर्तव्य है, और अगर हम गुरु की शरण हमने सही ढंग से स्वीकार की है तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में उथल पुथल होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गुरु के आदेश के अनुसार हम चैंटिंग शुरू करते हैं तो क्या हुआ था, जैसे ही हिलाया तो धेनु का सुर भागते हुए आया और ऐसे लगे से पूरी पृथ्वी में भूचाल आ गया हो। इसलिए जैसे ही हम गुरु के आदेश के अनुसार भक्तों के संग में चैंटिंग शुरू करते हैं तैसे ही हमारा जो मन है बिल्कुल उसमें भूचाल आ जाता है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं करना नहीं करना, ये कौन आ गया यहाँ से, मुझे पागल बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, मैं सही सलामत चल रहा था, क्या कर दिया मेरे साथ, सब कुछ छुड़वा दिया, मैं नहीं करूँगा ये, तरह तरह के विचार आते हैं, है ना, मन करता है विद्रोह कर दें। लेकिन नहीं, उसमें समझाना है ये धेनु का स्वर है, गधे वाली मानसिकता है जो मुझे इसी भौतिक संसार में जकड़ के रखेंगे। तो साधु के वाक्य, साधु का मतलब जो काट दे हमारी भौतिक आसक्ति को, वो सुनने में बड़े कड़वे हो सकते हैं, क्यों मुझे डांट रहा है, क्यों नहीं मुझे खुला छोड़ देता, क्यों इतना इंटरफेयर करता है, सारी सारी मेरी स्वतंत्रता छोड़ दी है। अभी पीछे परसों था ना 15 अगस्त, है ना, दिन में लोग पतंगे उड़ाते हैं, तो 15 अगस्त के दिन पतंगे उड़ा रहे हैं, सब उड़ाई होंगी पतंग, है ना, पतंग कैसे उड़ाते हैं, करते हैं ना यूँ, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, टेक्निक में भूल गए, थोड़ी सी ढील छोड़ते हैं फिर यूँ करते हैं, है ना, और पतंग सोचना शुरू करें क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, बार बार खींच रहे हैं, छोड़ मुझे, ढील दो ढील दो, ढील दी ठीक है, फिर यूँ कर रहे हैं, क्या है ये, नहीं करना मैं, छोड़ दो, तो छूट गई तो कटी पतंग की क्या गति होती है, है ना। और कटी पतंग सोच रही अब मैं फ्री हूँ, जहाँ मर्जी जाऊँ यूँ यूँ चल के, है ना, वो क्या होती है, उसको भी सारे लूट लेते हैं, है ना। इसी ढंग से जब गुरु हमें मारते हैं यूँ, चल थोड़ी सी ढील देंगे से फिर खींचते हैं ये कर, तो हमें गुस्सा आता है, क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ देंगे फिर क्या होगा, लगेगा हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जितना भी हमने आध्यात्मिक सुकृति जोड़ के रखी है सब टूट ली जाएगी, हमारी गति कटी पतंग की तरह होगी, कोई दिशा नहीं, दिशाहीन है हम आध्यात्मिक जीवन में लेकिन दिशाहीन। तो जब गुरु के आदेश शुरू शुरू में मिलते हैं तो बहुत कड़वे लगते हैं, बहुत कड़वे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं आए कि दिल में भूचाल मचल रहा है और हमें कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब अभी हमने सही ढंग से शरण नहीं ली है। कई भक्त आते हैं यहाँ पे, आते रहेंगे, चुपचाप 16 माला कर रहे हैं, भक्तों के ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, और उनको लगता है मेरा मन बहुत साफ है, शांत आराम से क्या चक्करों में पड़े उनके आगे पीछे घूमे, मालूम चल गया 16 माला करनी है, थोड़ी बहुत पुस्तक पढ़नी है, भगवान के दर्शन करने हैं, आरती में नाच लेना है, क्या जरूरत पड़ी है किसी भक्त के पास जाऊँ पूछताछ करूँ, मैं इसी में आनंद हूँ। ये अहंकार हमें रोकता है, लेकिन इस अहंकार को त्याग कर अगर हम शरण लेंगे और विनीत भाव से पूछेंगे तब जो आदेश मिलेंगे तब हमारे दिल में भूचाल आएगा, हृदय में भूचाल आएगा, है ना। फिर मालूम चलेगा कि जैसे वो धेनु का सुर बढ़ के आया, एकदम जोर से गरजता हुआ और बलराम जी ने उसका वध किया, क्या हुआ, फिर दूसरे असुर निकल के आए। इसी ढंग से जब हम ध्यान पूर्वक जप करना शुरू करते हैं तब मालूम चलता है हमारे हृदय में क्या क्या अनर्थ छिपे हुए हैं, सब बाहर निकल के आते हैं, है ना। अपने असुरों को दुश्मनों को मारने से पहले कम से कम हम देख तो लें क्या है। अगर कोई व्यक्ति भक्तों के शरण में नहीं आएगा, भक्तों के साथ मिलकर सेवा नहीं करेगा, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब भक्तों के संग में आता है और भक्तों के संग में मिलकर सेवा करता है तब मालूम चलता है अरे क्या क्या अनर्थ छिपे हुए हैं। उस समय साधुओं की आज्ञा का पालन करना बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये धेनु का सुर की मानसिकता को हमने समझना है। या तो हम विनीत भाव से होकर भक्तों से प्रश्न नहीं पूछते, अगर पूछ भी लेंगे उसके बाद फिर से बहुत सी शक्ति चाहिए उस इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में उतारने के लिए। धेनु का सुर के पास ताल फल था, पका हुआ फल, मीठा फल, लेकिन उसको खा नहीं रहा था और ना ही खाने दे रहा था। हमारे को बहुत अच्छा ज्ञान मिल गया, पका हुआ फल भागवतम का, पका हुआ फल हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम इसका आस्वादन नहीं कर रहे हैं, इसको हम अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। तो ये आचार्यगण बताते हैं ये हमारे आलस्य का अनर्थ है। आलस जो हमने सुना उसको अपने जीवन में ना उतार पाए, बहुत शक्ति चाहिए इसके लिए, ये लिथार्जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ग्वाल बाल जाके कृष्ण बलराम से प्रार्थना कर रहे हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहण, इसी ढंग से हमें प्रार्थना करिए, राम राम महाबाहो, हे बलराम जी, हे कृष्ण, आपने कई दुष्टों का वध किया है, मेरे हृदय रूपी ताल वन में प्रवेश कीजिए और यहाँ पे धनुकासुर और दूसरे जो गधे बैठे हैं, गधों वाली जो मानसिकता है, इसको तहस नहस कर दीजिए, सारे के सारे वृक्ष गिरा दीजिए, सारे के सारे असुर छिपे पड़े इसका नाश कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निश्चित रूप से ये हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं कि हम अपने केवल अपने प्रयासों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे प्रयास उसी समान होंगे जैसे चिड़िया के अंडे खा लिए गए थे और चिड़िया ने सागर को सुखाने का संकल्प ले लिया था, और हम संकल्प लेंगे नहीं मैं अपने सारे अनर्थों को दूर करूंगा, तो हमारा जो संकल्प है चिड़िया के संकल्प के समान होगा। लेकिन वो संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, चिड़िया के संकल्प से कहाँ इतना बड़ा सागर, कहाँ छोटी सी चिड़िया, कई बार वो सागर का एक बूंद देने भी जाती थी, उसकी सागर की लहरें उसको दूर भगा देती थी, लेकिन फिर भी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी, बार बार जाती गई, एक एक बूंद उठाती गई, एक एक बूंद उठाती गई। नारद मुनि जो बेस्ट रिपोर्टर हैं पूरे यूनिवर्स के, उन्होंने देखा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है, मुझे जरूर इसको फैलाना चाहिए। तो गए गरुड़ जी के पास, सुना है आपकी छोटी बहन क्या कर रही है, आपकी छोटी बहन के ऊपर इतनी मुश्किल हो गई, आप यहाँ बैठे हो। बोले क्या हुआ, ऐसे ऐसे उसके अंडे खा लिए सागर ने। बोले चलो, गरुड़ जी भी आए सागर के पास, भैया अंडे वापस कर दो। सागर ने फिर मजाक समझा, बोले कोई नहीं अंडे, जाओ यहाँ से। ठीक है, गरुड़ जी ने अपने एक पंख से सागर को ऐसे मारा, सागर कई सैकड़ों किलोमीटर दूर चला गया। सागर को लगा कोई बड़ी बात है, बोले अभी देता हूँ, उसने अंडे दे दिए। तो आचार्यगण क्या बताते हैं, पुराणों में ये कथा आती है कि अगर कोई साधक इस ढंग से मेहनत करता है दृढ़ता के साथ और लगा रहता है, चिड़िया ने हिम्मत नहीं आ रही, जो कुछ हमारे जीवन में होने दो उससे घबराना नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें चिड़िया को पीछे कर रही थी, हमारे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा नीचे गिरेगा, जो मर्जी होता रहे, नहीं मुझे इस अनर्थों को दूर करना है, लगे रहे हम, मुझे ध्यानपूर्वक जप करना है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है। तो जब हम लगे रहेंगे तो क्या होगा, बलराम जी हमें और शक्ति देंगे, निश्चित रूप से हमें शक्ति देंगे। शिला प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन में कृष्ण बलराम की स्थापना की तो प्रभुपाद जी ने बोला अब आपके पास कृष्ण बलराम आ गए हैं, अब जो भी समस्या इनको बताओ वो समाधान कर देंगे। तो हम पंजाबी वासियों के पास इतनी अच्छे भगवान ने कृपा की, हमारे बीच में कृष्ण बलराम है और हमने देखा है भक्तों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, जो भी समस्या है हम कृष्ण बलराम को बताएं, निश्चित रूप से उसका समाधान होता है। लेकिन शर्त इसमें एक है, बलराम जी के सामने कोई कपटता नहीं होनी चाहिए, भगवान जी कपटता के नहीं, जैसे कलिंग राज थे जुआ खेलते हुए बलराम जी से धोखा दे रहा था, वहीं पर वध कर दिया, और दूसरा बलराम जी के सामने प्रार्थना करते हुए भक्तों से कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। दुर्योधन बलराम जी के ही शिष्य थे लेकिन पांडवों से द्वेष करते थे, कोई हेल्प नहीं की बलराम जी ने। हाँ, हमारा ये अनर्थ है कि भक्तों से द्वेष है, ये हम बलराम जी को बता सकते हैं। दुर्योधन ने कभी बलराम जी को ये नहीं बताया कि मेरे इस द्वेष को दूर कर दीजिए, वो करता तो जरूर दुर्योधन को दूर कर देते, लेकिन हम अगर ये प्रार्थना करेंगे, हाँ मुझे भक्तों से द्वेष हो रहा है बलराम जी, मैं दुर्योधन नहीं बनना चाहता, मेरी मदद कीजिए, तो बलराम जी जरूर मदद करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है बताने को बलराम जी के तत्व में, बलराम जी के लीलाओं में, लेकिन आगे चार दिन और पड़े हैं, तो आज बलराम जी से हम यही प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में जो अज्ञानता रूपी धेनु का सुर बैठा हुआ है, जो एक गधे की तरह हमारे अंदर भोगने की मानसिकता है, जो शास्त्रों के हम सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जो शास्त्रों के सार को ग्रहण करके अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं अपने आलस्य के कारण, इन सब अनर्थों का आप वध कर दीजिए, हमें बलराम जी को आमंत्रित करना चाहिए। हरे कृष्ण, सब भक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बलराम की, ग्रंथा श्रीमद भागवतम की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।